श्रोता है, नमस्कार जी।
जी नमस्कार
जी, आपका शुभ नाम?
मेरा नाम जयकिशन अग्रवाल है, साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बोल रहा हूँ।
जी स्वागत है आपका जी।
सबसे पहले तो आपको, डॉक्टर साहब को धन्यवाद करता हूँ कि सुबह इतनी मुश्किल से आप आते हैं और आजकल तो बड़ी भयंकर बारिश है।
जी आपका बहुत धन्यवाद।
आप लोग इतने में आते हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम FM 102 पे जाता था वो आकाशवाणी ने बंद कर दिया है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना कर रहा हूँ, रेगुलर रेडियो पे बोलता हूँ कि भाई इसे 102 पे शुरू कर दें, जिससे पूरे देश में ये कार्यक्रम जाए और लोगों को फायदा हो। अब मेरे तीन क्वेश्चन है।
जी बताएं।
पहला क्वेश्चन है कि जो कान है
जी,
और कान में अगर छेक है, बच्चा हो या बड़ा हो, और उससे पस जा रही हो
जी
रेगुलर, और उससे भी कहते हैं कि अगर इसका समय पर इलाज नहीं कराया जाए तो वो भी जो है कैंसर बन जाता है
जी,
और चेस्ट में या किडनी में चला जाता है, तो क्या ये सच है कि इसे कैंसर बन सकता है या नहीं बनता है
जी,
और हमें समय पे इलाज कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, नंबर एक। नंबर दूसरा, अभी आपने जो लोग तंबाकू की आपने बात की
जी,
आज भी पूरे देश में नॉर्थ इंडिया या गुजरात या ऐसी जगह हैं जहाँ खाना खाने के बाद आदमी को पान जरूर दिया जाता है। आदमी पान खाता है, उसका कट्ठा भी होता है, चूना भी होता है, पान भी होता है। आदमी कहता है भाई इससे बड़ा फायदा होता है, खाना हजम हो जाता है। लेकिन जो ये तंबाकू है, लोग सूखी सुपारी के साथ साथ तंबाकू डाल के चबाते रहते हैं और बार बार जो है वो खाते ही रहते हैं, तो क्या वो घातक सिद्ध है? पान खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या तंबाकू का सूखा खाना चाहिए नहीं खाने चाहिए, इससे कैंसर बन सकता है नहीं बन सकता है, नंबर दो। और नंबर तीन, जो भी ये बात चल रही है छालों की
जी,
अब छाले अगर फर्ज कीजिए धीरे धीरे करके बड़े आदमी में ही बढ़ जाते हैं, अल्सर हो जाता है, कहते हैं कि ये छाले जो हैं वो ठंडे ठंडे पानी लीजिए, ठंडी ठंडी चीज लीजिए, क्योंकि आदमी खा तो सकता ही नहीं है, तो क्या ये जो खाता है और जो ये अल्सर बन जाता है और ये शरीर में चला जाता है, क्योंकि जो जाएगा पिएगा वो भी गले के साथ जाएगा ही, तो क्या वो कैंसर बन सकता है? तो इसका इलाज क्या है? कोई कत्था लगाता है, कोई ग्रीसिन लगाता है, तो इसका इलाज क्या है? और मैं एक तपस्विनी जी से बात करना चाहता हूँ
जी,
कि ये 7-स्टार BL कपूर जो है वो हॉस्पिटल बन गया है, तो क्या इसमें सुबह गरीबों के लिए, जैसे और हॉस्पिटल में लगती है, तो क्या गरीबों के लिए इसमें सुबह OPD लगती है? और अगर लगती है तो उसमें सब बड़े डॉक्टर देखते हैं, उसका चार्ज क्या है, इतना मेरे को बताएं। धन्यवाद।
चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर तपस्विनी प्रधान जी, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए क्या कुछ विशेष प्रयोजन जी?
आपके सवाल बहुत सुंदर सवाल हैं, सुबह सुबह ये सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है
जी।
जैसे इन्होंने पूछा कि वीकर सेक्शन के लिए है कि नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोविजन। अभी रिसेंटली अब ये शुरू हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये चीज शुरू हुआ है, और स्पेशल OPD भी उनके लिए लगता है, और उनको देखने वाले कोई जूनियर स्टाफ नहीं होते हैं, सभी स्पेशलिस्ट और सीनियर कंसल्टेंट होते हैं। तो ये मत सोचिए कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो इनको जूनियर स्टाफ ही देता है, ऐसा कुछ।
बड़ी अच्छी बात। चलिए इनके सवालों पे आते हैं डॉक्टर तपस्विनी प्रधान जी। पहला सवाल इन्होंने किया कि कान में संक्रमण और पस हो गया या फिर पर्दे में छेद है, तो ये क्या कैंसर की तरफ ले जा सकता है?
ये सवाल जो इनका है बहुत, मुझे लगा कि काफी वैलिड सवाल है, क्योंकि छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम अक्सर देखा जाता है। तो कान के जो पर्दों में छेद होता है या कान में इन्फेक्शन होता है, अधिकतर इसका कारण नाक से आता है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंट नजला जुकाम हो, URI जिसको हम कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो ये कीटाणु वहाँ से आके कान में आते हैं और कान में इन्फेक्शन कराते हैं। अगर इसका केयर ना किया जाए तो पर्दे में छेद होता है और कान अक्सर बहता है। तो इसका अगर ये कॉन्स्टेंटली ये प्रॉब्लम रहे तो करीबन इसका एक इंडक्शन पीरियड टाइम होता है। बॉडी में एक चीज़ सबको समझने की बात है, अगर कोई भी चीज़ उसको क्रॉनिकली इरिटेट करे
जी,
तो वो धीरे धीरे समय के साथ कुछ और रूप ले लेता है जो कि कैंसर का रूप हो सकता है। तो कान में अगर बार बार पस पड़ता है, करीबन देखा गया है 15-20 साल या 20-30 साल में इसका परिवर्तन कैंसर के रूप में हो सकता है
जी।
इसलिए अगर ये चीज किसी भी पेशेंट के साथ हो रही है तो उनको एक ENT स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए और इसका इलाज बहुत अच्छे रूप में हो सकता है
जी।
दूसरा सवाल जो इनका था, पान का सवाल था
जी।
ये हमारे भारतवर्ष में बहुत ही ट्रेडिशनल रहा है कि कोई भी मेहमान घर में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं पान के साथ। पर पान में एक अच्छी बात भी है और बहुत सारी बुराइयां भी हैं।
जी।
अगर हम पान का पत्ता देखें, खाली पान का पत्ता, उसमें कई कई गुण हैं।
जी।
इनफैक्ट उसमें ऐसे सब्सटेंसेस पान के पत्ते हैं जो कि हमें कैंसर से बचाव करते हैं।
जी।
पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमने इसका जो अलग रूप दे दिया पान का, पान में चूना, कत्था, तंबाकू और उसके ऊपर सुपारी भी हम ऐड करते हैं।
जी।
तो ये हर एक जो चीज इंग्रेडिएंट्स हैं पान के, उसका कुछ कुछ अलग ही बॉडी में फर्क आता है। यानी कि तंबाकू तो सभी लोग जानते हैं कि इसका एक कैंसर करने का टेंडेंसी है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि सुपारी भी कार्सिनोजेनिक है।
जी।
पर कत्था, चूना, इन सब का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है कि ये जो चीजें हैं तंबाकू और सुपारी जो हम मिलाते हैं, कैसे इनका जो कैंसर कॉजिंग पोटेंशियल को और बढ़ाता है। तो पान एज सच, अगर पत्ता ले, सेहत के लिए अच्छा है, इट इज अ गुड डाइजेस्टेंट ऑल्सो और हमें कैंसर से बचाव करता है, पर उसके साथ जो हम अन्य चीजें जो ऐड करते हैं वो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं।
जी, वो निश्चित तौर पर। डॉक्टर एचसीएल गुप्ता जी, एक और सवाल उन्होंने किया था, जैसे उसके बारे में जवाब भी दिए गए थे, छाले के लेकर और अल्सर को लेकर। छाला जब अल्सर में तब्दील हो जाता है, और फिर क्या ये कैंसर में तब्दील होने में इसको कितना वक्त लगता है?
देखिए जयकिशन जी का जो सवाल है बहुत ही बढ़िया सवाल है।
जी,
क्योंकि ये एक आम लोगों की समस्या है, पर वक्त के बारे में तो नहीं कह सकते। पर अगर एक छाला कई वर्षों तक मुंह में जुबान में रहता है,
जी जी,
तो बदल सकता है कैंसर, हो सकता है कैंसर।
जी।
तो छाला रहना नहीं चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कोई इलाज नहीं है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके मुंह में छाले बार बार पड़ते हैं या कोई छाला है, तो उस छाले की बायोप्सी जांच करानी चाहिए, और जांच कराने के बाद अगर वो कैंसर के लिए निगेटिव है तो वो हर कार्य करना चाहिए जिससे छाले दोबारा ना बने।
और एक बात आपने बोली थी डॉक्टर साहब, ओरल हाइजीन की बात,
वही मैंने पहले कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि ओरल हाइजीन बहुत महत्वपूर्ण है। और बहुत सी आदतें हैं जिनकी वजह से छाले बनते हैं, कैंसर बनता है, जैसे स्मोकिंग एक फैक्टर है।
जी।
सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, चुरुट पीना,
जी,
हुक्का पीना, ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से भी एक कुछ डिफिशियंसीज भी होती हैं, नॉन मेलिग्नेंट अल्सर्स भी बनते हैं। इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए।
जी।
शराब आज फैशन हो गया है, शराब को भी आपको दूर रहना चाहिए। और शराब और सिगरेट का या बीड़ी का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें
बहुत
क्षणिक मजा तो देती हैं,
जी,
लेकिन शरीर के लिए और स्पेशली ओरल कैविटी के लिए और लंग के लिए और पूरा नेक, हेड एंड नेक के लिए बहुत ही घातक होती हैं। इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और बहुत से डाइटरी फैक्टर्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको सबको खाना चाहिए। डाइट विटामिन सी, बीटा कैरोटीन है, जिंक वगैरह है, इन सब चीजों को लें। जिसकी जिंक की डाइट में आजकल बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स आते हैं, उनके साथ जिंक को ले करके खा सकते हैं आप। हल्दी एक बहुत अच्छा है, हमारे हिंदुस्तान में तो हल्दी सब लोग खाते ही हैं, ये बहुत ही एक अच्छा प्रिवेंटिव फैक्टर है। क्यूमिन सीड्स वगैरह है, ये भी बहुत रोकते हैं। तो इन सब चीजों को खाएं, और जिसकी वजह से, पर ये समझ लें कि अगर कोई अल्सर है और जो हील नहीं हो रहा है या बहुत दिनों से चल रहा है, बार बार उसी जगह हो रहा, तो निश्चित रूप से आप किसी अच्छे चिकित्सक के पास, कैंसर विशेषज्ञ के पास जाएं और इसकी बायोप्सी जरूर कराएं, और इसके बाद ही जो पॉसिबल हो वो निदान होगा।
डॉक्टर साहब, ओरल हाइजीन, मुख के स्वास्थ्य, साफ सफाई की तरफ फिर से आपका ध्यान दिलाऊंगा। और एक आम आदमी इससे यही समझता है कि दिन में अगर सुबह और शाम दो वक्त ब्रश कर लिया जाए तो ये साफ सफाई बस इतनी यहीं तक पहुंच रहती है, जी, या कुछ और भी इसके लिए किया जाना आवश्यक होता है?
प्रॉपर खाने के बाद अगर दांत में गड्ढे हैं या खाना फंस जाता है, तो ये खाना कुल्ला करना चाहिए उसके बाद। और अभी जयकिशन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था पान वाला।
जी हाँ,
पान अच्छी चीज है, खाना चाहिए, पर पान दिन भर नहीं खाना चाहिए। जैसे वो पान का वो डब्बा ले लेते हैं और हर 10 मिनट में आया, मुंह में लगा लिया।
जी हाँ,
तो पान, सुपारी, ये सब एक बार अगर आप खाते हैं दिन भर में तो ऐसी कोई बात नहीं है, पर अगर आप इसको एक हैबिट बना लेते हैं कि सुबह से शाम तक जहाँ जाएं जो भी आए घर में आए उसके भी ऑफर करें और खुद भी एक पान खा लें, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। पर हाँ, सोते वक्त ज़रूर ब्रश करना चाहिए, और अगर मुंह में बदबू आती है या कुछ आपको लगता है या दांतों में बार बार खाना फंसता है, तो ब्रश करने के बाद आप लिस्टरीन से माउथ वॉश भी कर सकते हैं और अपना
मुख पे दुर्गंध। जी हाँ, मुख पे दुर्गंध वाले विषय पे दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ श्रोता है, उनकी समस्या सुनते हैं। नमस्कार जी।
हेलो
जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं।
मैं मुकेश मित्र बोल रहा हूँ
जी,
कोटबिहार से।
मुकेश जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप?
सर मेरी एक प्रॉब्लम है
जी
की लगभग 4-5 साल पहले मेरे कान का पर्दा खसक गया था थोड़ा सा
जी,
तो ऐसी आवाज आती थी जैसे कुत्ते भौंक रहे हो
जी,
तो उसको मैंने लेडी आर्डिंग में दिखाया, तो उन्होंने 5 दिन की दवाई दी, एक एक गोली पर डे, तो ठीक हो गया। अब समस्या ये है कि मेरे कानों में बहुत दर्द होता है और कान में ऐसा लगता है जैसे कुछ मतलब मवार टाइप का कुछ चल रहा है अंदर
जी,
कीड़ा सा कुछ अजीब सा, और बीच बीच में दर्द होता है। तो मैंने चेक भी कराया कई बार
जी,
तो वो कहते हैं कि आपके कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपका पर्दा जो मतलब तो होता है, अभी नाक में प्रॉब्लम है
जी,
तो ये क्या हो सकता है, इसका क्या ट्रीटमेंट है? मैं काफी परेशान हो गया जी।
चलिए डॉक्टर तपस्विनी प्रधान जी, इन्हें ENT विशेषज्ञ को फिर एक बार चेक कराना चाहिए जी। अभी जो स्थिति है ये कहीं कोई इशारा इस तरफ करती है जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं?
देखिए, कान में जो दर्द है जरूरी नहीं है कि वो कान से ही आ रहा है
जी।
कान में जो दर्द है नाक से भी आ सकता है, नज़लों के कारण भी हो सकता है, या मुंह में कोई दिक्कत हो वहाँ से भी आ सकता है, या गले में कोई प्रॉब्लम हो। दैट इज़ वाई स्पेशलिटी को ENT कहते हैं, यानी कि ये जो सभी अंग है इतने इंटीग्रेटेड हैं कि एक जगह की प्रॉब्लम जो है वो दूसरी जगह पे भी महसूस हो सकता है। जैसे इन्होंने कहा कि कान में दर्द है पर मुझे अपने स्पेशलिस्ट ने कहा कि नाक में प्रॉब्लम है, तो ये जो चीज़ है इनको थोड़ा सा समझने की बात है कि जो कान में जो प्रॉब्लम है कई अन्य जगह से भी आ सकता है। कान का जो मसला क्यों हल नहीं हो रहा है, क्योंकि हो सकता है नज़लों में बार बार दिक्कत हो रही हो, नाक की हड्डी टेढ़ी हो, या नाक में कोई प्रॉब्लम हो जिसके कारण ये इन्फेक्शन कान में जा रहा है। तो ट्रीटमेंट जो है केवल कान का नहीं, नाक को भी देखना पड़ेगा या नज़लों को भी देखना पड़ेगा, या पूरा एक कंप्लीट प्रोफाइल एक ENT चेकअप से जरूर करा लेना चाहिए।
डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में आप रहते हैं तो वहाँ निश्चित तौर पे नाक कान गला विशेषज्ञ होते हैं, तो इस तरह की समस्या आती है और जब थोड़ी गंभीर समस्या लगती है तो आपस में विचार विमर्श भी होता है, आपसे भी सलाह ले लेते होंगे जी?
बिल्कुल, आजकल हर एक स्पेशलिटी में इतना एडवांसमेंट हो गया है, हर एक स्पेशलिटी अपने में एक अलग से एडवांस कर चुकी है। इसलिए अगर हमारे ENT सर्जन को लगता है कि ये किसी और रूप में जा रहा है, कैंसर के रूप में जा रहा है, तो डेफिनेटली वो रेफरल भेज देते हैं कि एक ऑन्को सर्जन के पास, एक हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन के पास, क्योंकि ये जो स्पेशलिटीज हैं कई हद तक ओवरलैप भी करती हैं, बट जो उस एरिया में माहिर है यानी कि जो उस एरिया में सुपर स्पेशलाइज करता है, डेफिनेटली उसको अगर इलाज के तौर पे देखें ही इज द राइट पर्सन, वही सही चिकित्सक होगा जो इस चीज का समाधान।
जी हमारे साथ एक और लिसनर है। हेलो,
नमस्कार जी, मैं रेवाड़ी से देवकी नंदन
जी। बताएं देवकी नंदन जी,
हम तम्बाकू और शराब का सेवन करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं
जी,
और पैसा खर्च करके बीमारी मोल लेते हैं
जी,
बीमारी को ठीक करने के लिए कितना पैसा बर्बाद करते हैं जो हम ठीक नहीं हो पाते। अब मेरे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि किसी कैंसर के मरीज का खाना पीना बंद हो जाए तो उसको किस प्रकार खाना खिलाते हो
जी?
और नंबर 2, आजकल सर्वाइकल की बीमारी बहुत चली हुई है, क्या सर्वाइकल के कारण भी कैंसर हो सकता है
जी? चलिए पूछ लेते हैं डॉक्टर SCL गुप्ता जी। पहला तो खाना पीना, जब कैंसर में मान लीजिए इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया फूड पाइप और तमाम अवयव जो उसमें शामिल होते हैं, तो किस तरह से भोजन दिया जाता है कैंसर पेशेंट को, क्या ये एडवांस स्टेज होती है?
ये बहुत ही एडवांस स्टेज की बात कर रहे हैं देवी नंदन जी, क्योंकि अगर मुंह में कैंसर है और अर्ली स्टेजेस में है तो खाने का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है
जी,
लेकिन खाने की नली में जरूर कैंसर अगर है तो उस समय आपको पता चलता है कि खाना नहीं जा सकता है, पहले पानी ही जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे सॉलिड के लिए भी प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, खाना नहीं जाता है, इकट्ठा होता जाता है, उल्टी हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन पे डिफरेंट पेशेंट्स के साथ जो अप्रोच हो सकती है, अगर पेशेंट को ऊपर से ट्यूब जा सकती है, तो कैंसर अगर बीच में खाने की नली के बीच में है तो उसको बाईपास करके एक ट्यूब डाल देते हैं जिससे खाना जा सकता है। अगर वो भी नेगोशिएट नहीं होती है तो पेट से ऑपरेशन करके भी एक फीडिंग जेजनोस्टमी कर सकते हैं, या ऊपर से बगैर ऑपरेशन किए हुए भी ट्यूब डाल सकते हैं। तो बहुत से वर्जन है जो किए जा सकते हैं, पर वो पेशेंट टू पेशेंट देवकी नंदन जी डिफर करता है, वो कैसा किस सिचुएशन में पेशेंट है और उसे क्या चाहिए, और टर्मिनली बिल्कुल ही खत्म होने वाला है पेशेंट, कुछ नहीं कर सकते हो तो भाई कुछ दिन के लिए आईवी फ्लूइड्स भी देते हैं, तो वो डिपेंड करता है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, पर ये सवाल उस पर्टिकुलर मरीज के साथ ही हो सकता है, उसके साथ हमें उस समय सिचुएशन पे क्या क्या करना है वो हम लोग करते हैं।
जी डॉक्टर तपस्विनी प्रधान जी, सर्वाइकल के बारे में पूछा था, क्या ये किसी वजह से कोई कारण बन सकता है, हेड एंड नेक की हम बात कर रहे हैं इसमें कैंसर का, जी ये समस्या इसका कोई कारण बन सकती है?
सर्वाइकल कैंसर जो रीढ़ की हड्डी का अगर हम कह रहे हैं, जनरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जो हम अधिकतर आम जनता को बहुत इन दिक्कतों से जूझना पड़ता है, ये जनरली ये कन्वर्ट नहीं होता है। ये एक तरह का एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है, यानी हड्डी की में कुछ कुछ परिवर्तन आ रहा है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। अधिकतर जो आजकल का हमारा प्रोफाइल है, काम करने का प्रोफाइल बैठने का है,
या तो कंप्यूटर में बहुत देर तक काम करना, या फिर तमाम लोग मोबाइल पे बहुत देर तक झुक करके,
और सही कहा आपने, तो इसीलिए हमें थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा, यानी कि थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हमें अपने रूटीन में लाना पड़ेगा। गर्दन के कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो करने पड़ेंगे, डाइट में कुछ हमें अपना इम्प्रूवमेंट करना होगा, थोड़ा कैल्शियम रिच डाइट खाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल में कहूँगे, और प्लस जब भी अगर हमारा बैठने का काम ज़्यादा है तो हर एक आधे घंटे में या एक घंटे में ब्रेक लेना चाहिए, जिससे कि बॉडी को भी आराम मिले।
और इसमें ध्यान रखना होगा सर्वाइकल के लिए जो व्यायाम किए जाते हैं वो विशेषज्ञ की देखरेख में किए जाने चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से जो व्यायाम किया जाएगा उसका नुकसान हो जाएगा फायदे के बजाय। अब हमारे साथ एक और श्रोता है, नमस्कार जी।
नमस्कार जी,
जी आपका शुभ नाम बताएं, सवाल पूछें आप।
मैं इंद्र प्रसाद अरोड़ा दिल्ली 93 से बोल रहा हूँ मैं।
जी इंद्र जी क्या जानना चाह रहे हैं?
अभी एक श्रोता ने पूछा था कि मुंह में जब छाले हो जाते हैं तो वो छाले क्या ठंडी चीजों से सही हो जाते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम दांतों में पेस्ट करते हैं, पेस्ट भी ठंडा होता है, क्या इससे भी मतलब कैंसर, अगर कैंसर बनने की संभावना होती है, क्या वह सही हो सकती है या नहीं? धन्यवाद
जी। डॉक्टर एचसीएल गुप्ता जी, ये इतना आसान काम तो नहीं है कि टूथपेस्ट कर लिया और कैंसर की आशंका से बच जाए, इतना आसान होता तो बहुत ही अच्छा होता। जी छाले की बात एक बार फिर से आ गई है। जी
छाला मुझे समझ में आया, बहुत ज्यादा कॉमन है मेरे ख्याल में, ये सबकी समस्याएं हैं और सबकी समस्याएं जुड़ी होती हैं, और मैंने बार बार ये कहा है कि ये ओरल हाइजीन बहुत महत्वपूर्ण है इन सब चीजों के लिए।
डॉक्टर साहब इसमें विटामिन डिफिशियंसी भी बहुत कारण बनती है।
जी हाँ जी हाँ, इसलिए जो फ्रेश फ्रूट्स हैं खाने पे, आदमी को फ्रेश फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खानी चाहिए अपने खाने की, ये जो आपकी आजकल की जो डाइट है पिज्जा बर्गर
ये फास्ट फूड से बचना चाहिए,
इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हर उस चीज की कमी होती है जो आपको जरूरत होती है, और इस तरह माउथ अल्सर्स के लिए भी बहुत जरूरी होती है जो चीज, वो इनमें नहीं होती है। और ओरल हाइजीन, रहा तक कॉलगेट टूथपेस्ट, आप कह रहे हैं कि टूथपेस्ट से ये प्रॉब्लम आती है, तो टूथपेस्ट से तो सफाई होती है, टूथपेस्ट से आप उसमें जो उसका एजेंट होता है वो मुंह में गंदगी बाहर करता है, टूथपेस्ट से करने से कैंसर नहीं होता है, पर टूथपेस्ट करने से सिर्फ सफाई होती है, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहें, टूथपेस्ट करें, प्रॉपरली करें, प्रॉपर ब्रश के साथ करें, और ऐसे ब्रश के साथ करें जो मुंह के कोने कोने में जाए और गंदे खाने को जो अटका हुआ है वो सब निकाल लाए और जिसको सड़ने न पाए।
डॉक्टर तपस्विनी जी कुछ आप बोलना चाह रही जी?
हाँ नहीं, जहाँ तक हम लोग टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं, एक चीज जो हमें श्रोताओं को बताना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि आजकल तंबाकू के भी टूथपेस्ट आते हैं, अगर गाँव में आप देखेंगे जैसे बिहार बंगाल उड़ीसा गुड़ाखू करके आता है या गुल करके आता है, इसमें तंबाकू मिला होता है, और बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि ये जो टूथपेस्ट में ये चीज मिला हुआ है, तो थोड़ा सा हम लोग इन लोगों को थोड़ा जानकारी और बढ़ाना है कि ये जो टूथपेस्ट है इसका इस्तेमाल ना करें।
जी अब हमारे साथ एक और श्रोता है, नमस्कार जी।
हेलो
जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं।
जी सर जी प्रणाम, मेरा प्रणाम दत्त गौड़ है, मंगोलपुरी से बोल रहा हूँ।
जी बताएं क्या जानना चाह रहे।
सर जी मेरा ये ना जिज्ञासा है कि जो थायराइड की समस्या होती है गले में, क्या वो कैंसर का रूप ले सकती है भविष्य में, ये प्रश्न।
जी और कुछ जानना चाह रहे। चलिए डॉक्टर एस सी एल गुप्ता जी, थायराइड की समस्या के कैंसर में कभी तब्दील हो सकती है? जी
देखिए थायराइड की समस्या आपने एक लाइन में तो कह दिया, लेकिन थायराइड की बड़ी समस्या होती है। थायराइड की कमी है तो उसको दवा खा लीजिए, थायराइड ज्यादा हो रहा है अगर आपको तो उसकी दवा खा के ठीक करें। पर हाँ अगर थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर बने हैं, नोड्यूल्स बने हैं, तो जब आप उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं या टेस्ट कराते हैं और उसमें आपको नोड्यूल्स मिलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी नोड्यूल्स कैंसरस बन सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो अगर आपको लगता है कि छोटे छोटे ट्यूमर्स बने हुए हैं आपके थायराइड में, तो उसको जरूर हृदय ने कैंसर के पास स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में ऐसा नहीं है जिसपे हो, पर फ्लक्चुएटिंग लेवल्स अगर जब होते हैं तो नोड्यूल बनते हैं और ये नोड्यूल बदल सकते हैं कैंसर में, ये ध्यान रखना चाहिए।
जी डॉक्टर तपस्विनी प्रधान जी, मुख में दुर्गंध की बात पहले भी एक दफा आई थी, एक मरतबा हमारे श्रोता ने पूछा था, तो ये अगर होती है तो क्या, जैसे डेंटल सर्जन होते हैं, डेंटल स्पेशलिस्ट होते हैं, तो पायरिया की वजह से भी हो सकती है और लगातार ये बनी रहती है तो ऐसा माना जाता है कि कैंसर का भी एक लक्षण हो सकता है, तो इसमें किस तरह से फर्क कैसे करते हैं?
मुंह में जो बदबू आती है, जैसे कहा हर एक चीज के कई कारण होते हैं,
यानी कोई व्यक्ति पूरी तरह ओरल हाइजीन का, साफ सफाई का ध्यान रख रहा है उसके बावजूद,
जी सब कुछ करने के बावजूद भी कई कारण हैं। कभी कभी नजला बराबर बना रहे
जी।
तो उसका जो भी सिक्रीशन है वो गले में आता रहता है और वो चीज स्मेल में आती है। दूसरा बहुत लोग है कि माउथ ब्रीदिंग करते हैं,
मुंह से
सांस लेते हैं, अगर नाक बंद हो तो मुंह से सांस लेते हैं, वो भी एक कारण है। दांतों में इन्फेक्शन हो, दांतों में दिक्कत हो, वो भी एक कारण है। दूसरा कैंसर अगर मुंह में है कहीं पर, जब ट्यूमर नेक्रोसिस हम कहते हैं, यानी कि जब सेल्स की बहुत ज्यादा तादाद में उसका उत्पन्न होता है और उसमें इन्फेक्शन होता है, सुपर एडेड इन्फेक्शन होता है, वो भी एक कारण बनता है। कभी बहुत ज्यादा पेट में एसिड हो तो वो गले में उछलता है, कभी वो भी कारण बनता है। तो कई कारण है, तो ये नहीं है कि हर टाइम मुंह में जो स्मेल है वो कैंसर है, पर अगर स्मेल जो है प्रोसेस कर रहा है तो दिखाना बनता है, तो जरूर स्पेशलिस्ट से जाके इस चीज का इलाज कराएं।
जी एक और लिस्टनर हमारे साथ, नमस्कार जी।
नमस्कार
जी, आपका शुभ नाम बताएं, सवाल पूछें, क्या जानना चाह रहे हैं आप?
जी मेरा नाम इस्माइल है, ग्राम आतिया जिला मथुरा से बोल रहा हूँ।
जी इस्माइल जी बताएं क्या जानना चाह रहे हैं।
सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे मुंह के कैंसर का छाले हुए और उसमें दाल धब्बे दिखाई पड़ते हैं तो आदमी इससे जानकारी कर लेता है
जी,
लेकिन जो खाने की नली का जो कैंसर होता है, गले का जो कैंसर होता है, इसके बारे में जानकारी आदमी को अर्ली स्टेज में कैसे हो सकती है
जी?
और जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल गांव में इतनी संख्या बढ़ी है कैंसर मरीजों की
जी,
के बहुत ज्यादा, और दूसरी हार्ट अटैक की। अगर सरकार जैसे टीवी पर ध्यान दे रही है और आंखों के ऑपरेशनों पर ध्यान दे रही है, अगर गांव में भी मरीजों को इस तरीके ले जा करके और इनकी जांच की जाए तो कितना अच्छा होगा।
जी बहुत अच्छा आपका सुझाव है और सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है, रोग भी कई हैं, देश विशाल है, जनसंख्या भी ज्यादा है और हर तरह की जाँच और प्रयास चल रहे हैं। डॉक्टर एस सी एल गुप्ता जी, इन्होंने सवाल पूछा कि मुंह में अगर कोई इस तरह की विकृति आती है, कोई धब्बा होता है या फिर छाले पड़ते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं, घाव ठीक नहीं होता है, तो उसके बारे में तो पता चल सकता है, लेकिन फूड पाइप में अगर है, खाने की नली में है, तो उसके लक्षण क्या होंगे, किस तरह से पहचानना चाहिए, इसके बारे में एक आम आदमी को कैसे ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएंगे?
इस्माइल जी समाज के लिए जो आप सोच रहे हैं बहुत अच्छी बात है
जी,
और प्रश्न भी आपने बहुत अच्छा किया है। सही बात है कि अगर खाने की नली का कैंसर है तो कैसे जल्दी पता चलेगा। तो देखिए आप नॉर्मली जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती है, पर अगर आप खाना खा रहे होते हैं और खाना गुटकने में तकलीफ हो रही हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता, और वो लंबे चल रही हो, ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक बार गुटकने की तकलीफ हो तो आपको तकलीफ फौरन डॉक्टर के पास जाना है, पर आप अगर 10-15-20 दिन तक तकलीफ हो रही हो लगातार,
खाना निकलने में दिक्कत,
हाँ, निकलने में, पानी निकलने में, लिक्विड निकलने में, किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो तो फौरन जाना चाहिए,
ये मुख्य लक्षण है।
हाँ, दूसरा, अगर आपकी एसिडिटी लगातार बनी हुई है, आपका एसिड बाहर की तरफ आता है, तेजाबी वो आता है मुंह में बार बार उलट के आता है, तो उसमें भी आपको फौरन, और वो बहुत दिनों तक चले, 10-15-20 दिन तक चले और दवाओं से ठीक ना हो, लोकल, जब आप लोकल डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो इस्माइल जी ऐसे उस जरूरत के हिसाब से आपको फौरन दिखाना चाहिए वहां पे किसी स्पेशलिस्ट को, और उसकी जांच करानी चाहिए। जांच कोई बहुत ही ऐसी जांचें नहीं है, सिंपल सी एक दूरबीन डाल के लोग देखते हैं वहां पर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं, या अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की फैसिलिटी नहीं है तो एक बेरियम स्टडी होती है जो एक्सरे की दुकान में जहाँ पे अच्छे एक्सरे वाले होते हैं वो कर लेते हैं, और उसके बाद अगर कोई ऐसी कमी आती है तो फौरन आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं जो इसके स्पेशलिस्ट है।
जी, तो फूड पाइप की, खाने की नली के कैंसर के बारे में बताया कि उसका मुख्य लक्षण यह है कि निगलने में बहुत दिन तक अगर तकलीफ रहती है, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं 15-20 दिन लगातार रहती है, तो इसकी आशंका करनी चाहिए और उसकी जांच करानी चाहिए, निदान कराना चाहिए, फिर उपचार की तरफ बढ़ना चाहिए। उपचार के बारे में डॉक्टर साहब बात करेंगे, उससे पहले हमारे एक श्रोता है हमारे साथ। जी नमस्कार।
हेलो
जी, आपका शुभ नाम।
जी राम राम जी।
जी जी राम राम।
मैं रमेश रानी से सरयाना बोल रही हूँ जी।
जी नमस्कार रमेश रानी जी, बताइए क्या जानना चाह रही हैं।
मेरी लड़की है जी।
जी।
तो उसकी ना छोटी उंगली में वो दर्द रहता था, तो डॉक्टर ने MR करवाया तो कहते वो थोड़ी कैंसर बताई थी
जी।
तो अब कभी कभी दर्द होता है, उन्होंने नाखून उतार के ऊपर भेजी थी रिपोर्ट, और उसमें थोड़े वो आया था टूमर, तो उसके बारे में कभी दर्द होता है, इसके बारे में पूछना था, अब ये कोई फैलने वाला है या इसके बारे में कोई आगे तकलीफ हो सकती है, थोड़ा इसके बारे में पूछना।
डॉक्टर तपस्विनी प्रधान जी, इनकी समस्या के बारे में जी कुछ बताएं।
देखिए रमेश रानी जी, जो दिक्कत आ रही है ये जरूर आपको एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना चाहिए, और अगर ये कैंसर का ऑलरेडी रूप ले चुका है तो एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। हमें इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये कैंसर फैल सकती है कि नहीं फैल सकती, ये तो बहुत ही लेट हो जाएगा अगर आप उस चीज़ का इंतज़ार करेंगे। इसलिए अगर अभी बच्चे को दिक्कत है ज़रूर एक ऑन्को सर्जन को दिखाइए, कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे।
जी हमारे साथ एक और श्रोता है, नमस्कार।
हाँ नमस्कार जी।
जी आपका शुभ नाम बताएं, क्या जानना चाह रहे हैं।
ओम प्रकाश चावला, सिरसा हरियाणा।
जी ओम प्रकाश जी,
मेरी दो जिज्ञासा है जी।
जी बोले।
एक तो ये जिज्ञासा है कि भारत की या विश्व की कह रहे या भारतीय कह रहे हैं, अधिकांश आबादी इस बात को से अनभिज्ञ है कि ये कैंसर एक लाइफस्टाइल का रोग है, यानी हम खुद ही इसको जो है हमारी जो देन है बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये अधिकांश आबादी इस बात से अनभिज्ञ है। और दूसरा मेरा ये है कि हम टीवी को तो छुआ छूत का रोग है टीवी, लेकिन संयोग वश हम टीवी को तो थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कैंसर को शुगर छूट का रोग मान करके बैठे हैं। कृपया दोनों पर प्रकाश डालें, इसके लिए सेने शैंपो का चक्कर लगा रहे हैं, कृपया दोनों पर आप
पूछते हैं डॉक्टर SCL गुप्ता जी से। डॉक्टर साहब, जैसे डायबिटीज लाइफस्टाइल से जीवन शैली से जुड़ा रोग है, हमारा श्रोता जानना चाह रहे हैं क्या कैंसर भी लाइफस्टाइल से जीवन शैली से जुड़ा रोग है, या फिर इसमें आनुवंशिक कारण उत्तरदायी होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं।
कैंसर का क्या नाम बताया इन्होंने
जी हमारे श्रोता ओम प्रकाश जी।
ओम प्रकाश जी, कैंसर के बारे में अभी तक ये तो नहीं कह सकते निश्चित रूप से कि कैंसर होता क्यों है
जी,
पर बहुत सारी वजहें हैं जिनके बारे में हम समझते हैं कि कैंसर इन वजहों से हो सकता है, और जैसा अभी एंकर साहब ने बोला जेनेटिक प्रीडिस्पोजन भी एक फैक्टर होता है, जिसपे अगर आपने देखा होता है कि किसी परिवार में ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है, उनकी माँ को रहा हो, तो फिर अपने बच्चे को जल्दी जल्दी दिखाते हैं कि 40-45 साल से ही उसका शुरू कर देते हैं कि वो अपना डॉक्टर को जरूर दिखाए, कोई गांठ हो तो खुद देखे, तो एक अनुवांशिक वो भी होता है, पर लाइफ स्टाइल भी जुड़ी होती है। आप हम अभी ओरल कैंसर की हेड एंड नेक कैंसर की बात कर रहे हैं, पर हेड एंड नेक कैंसर में भी आप देखिए कि सिगरेट, तम्बाकू खाना, चूरस पीना, गांव में आप हुक्का कितना पीते हैं, तो ये सब चीजें आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आप हुक्का नहीं पीते हैं तो आप जिंदगी नहीं जी सकते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते हैं तो आपकी लाइफ नहीं चलती। पर आप अगर अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करना चाहते हैं तो एक अच्छी डाइट और इन सब चीजों से दूर रहें तो इन कैंसरों से छुटकारा किसी हद तक मिल सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आपने शराब नहीं पिया या सिगरेट नहीं पिया, तम्बाकू नहीं खाई तो 100% आपको मुंह का कैंसर या गले का कैंसर नहीं होगा। पर अमूमन देखा यह गया है कि करीब 60-70% लोगों में ये फैक्टर्स होते हैं। ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिन्होंने जिंदगी में तम्बाकू छुई नहीं है और उसको भी कैंसर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं।
जी डॉक्टर तपस्विनी जी,
जी
ये भ्रांति भी दूर कर दे जैसे हमारे श्रोता ने उठाई थी कि कैंसर क्या संक्रामक रोग है। जी क्या इसका संक्रमण हो सकता है कि एक मरीज से दूसरे मरीज में, ये भ्रांति को दूर करें कृपया।
देखिए ऐसा है जैसे उन्होंने कहा कि टीबी,
जी हाँ
टीबी जो है कम्युनिकेबल है, पर सभी टीबी कम्युनिकेबल नहीं होते हैं। जो फेफड़ों में होता है वो कम्युनिकेबल होता है, बाकी टीबी तो बोन हड्डियों में भी हो सकता है, गिल्टियों के रूप में आ सकता है, कई तरह तरह के टीबी होता है, पर केवल फेफड़ों वाली जो टीबी है वो कम्युनिकेबल है, तो ये उनको जानना जरूरी है। जहाँ तक कैंसर का सवाल है, कैंसर जो है ये कम्युनिकेबल नहीं है,
जरा भी संक्रामक नहीं है कैंसर जी।
क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैंसर के मरीज जब भी हमारे पास आते हैं तो उनके अटेंडेंस का ये सवाल रहता है, क्या हम इनके साथ खाना खा सकते हैं, क्या ये हम मेरे बच्चे इनके साथ बैठ सकते हैं। तो ये चीज इनके दिमाग से हट जाना चाहिए कि ये एक दूसरे से फैलती नहीं है। इनफैक्ट जब भी किसी मरीज को कैंसर होता है उसको बहुत इम्पोर्टेंट है कि पूरे परिवार से एक इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए। वो इमोशनल सपोर्ट तभी आता है जब इनके दिमाग में, अटेंडेंस के दिमाग में दूर रहेगा कि ये चीज उनको भी आ सकता है।
जी इलाज की बात कर लें डॉक्टर साहब, तो किस तरह से जैसे मुंह में अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया है, निदान हो गया है, तो फिर किस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहता है?
जैसे हमारे डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि अधिकतर हमारे जो भारतवर्ष में मरीज आते हैं एडवांस स्टेज में आते हैं, यानी कि 60-70% मरीज जब आते हैं दे आर ऑलरेडी एडवांस। बहुत ही कम है जो लकी होते हैं, जिसको हम फॉर्चुनेट फ्यू कहते हैं, जो हमारे पास अर्ली स्टेज में
जैसे कोई मरीज किसी और रोग की आशंका लेकर आया और पता चला उसके निदान में कि कैंसरस ग्रोथ है, उसमें कैंसर के पूरे लक्षण है और उसकी पहले डिटेक्शन हो गया, निदान हो गया, तो उसका उपचार संभव है। लेकिन एडवांस स्टेज पे फिर किस तरह से आप डील करते हैं?
एडवांस स्टेज में हमेशा मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है, यानी कि सर्जरी चाहिए, रेडिएशन चाहिए, कीमोथेरेपी चाहिए। ये तीनों मोडालिटीज का कहीं ना कहीं रोल आता है। मेजॉरिटी जो हमारे मुंह के कैंसर्स होते हैं, सबसे पहले इनका सर्जिकल रोल होता है एडवांस स्टेज में भी। तो आपको रेडियोलॉजी करते हुए, देखते हुए, सीटी स्कैन या पेट स्कैन या एमआरआई करके असेस करना होता है कि क्या ये जो कैंसर है ऑपरेशन के लायक है कि नहीं। अगर ऑपरेबल है, ऑपरेशन के बाद 100% इनको रेडिएशन भी लगता है। रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी का रोल होगा कि नहीं होगा, वो उनके जो स्पेसिमेंट जाता है, यानी कि जब ट्यूमर निकाल दिया जाता है उसके बाद जो रिसेक्शन होने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे कीमोथेरेपी ऐड करना है कि नहीं, वो फैसला किया जाता है। बट मान लीजिए पेशेंट ऐसी स्थिति में आता है कि वो ऑपरेबल नहीं है, बट यंग पेशेंट है, वेल प्रिजर्व्ड है, तो हम कीमो रेडिएशन का सहारा लेते हैं। पर अगर बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और मरीज फैलाव के साथ आया है तो फिर तो केवल कीमोथेरेपी का ही रोल रह जाता है।
जी हमारे साथ एक और श्रोता है, नमस्कार जी। हेलो जी नमस्कार।
हेलो नमस्ते
जी, आपका शुभ नाम बताएं, सवाल पूछे आप संक्षेप में।
जी मैं सुरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ।
जी बताएं सुरेंद्र जी, क्या जानना चाह रहे हैं?
जी ये ओरल के मतलब शुरुआत लक्षण क्या होते हैं इसमें?
जी
और ये क्या जेनेटिक है ये रोग?
जी डॉक्टर एसएल गुप्ता जी बता रहे हैं। डॉक्टर एसएल गुप्ता जी, हमारे कई श्रोता बाद में ट्यून इन करते हैं प्रोग्राम को, तो इससे सारी चर्चा इन्होंने शायद नहीं सुनी, तो एक बार फिर से कुछ मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं जिनसे पता चल जाए मुख में या कहीं गले में या फूड पाइप में, खाने की नली में कैंसर पनप रहा है, इसके बारे में बताएं कृपया।
देखिए श्रीमान जी, हर चीज जो थोड़ा नॉर्मल से हटकर अगर आपको महसूस हो रही हो,
जी
खाना नॉर्मली खाते हैं कोई तकलीफ नहीं, पर अगर खाना खाने में तकलीफ हो रही हो तो आप समझ लीजिए कि, और लगातार चल रही हो तो आप समझ लीजिए कि आपको कहीं जाना है,
यानी चबाने में दिक्कत है, निगलने में दिक्कत है भोजन के बाद
आपके मुंह में
जी।
अगर कोई नॉर्मली तो छाले नहीं होते, अगर आपके मुंह में छाले पड़े हुए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको तकलीफ हो रही। कोई ऐसी गांठ मुंह में हो जो हील कर रही हो या वो ब्लीड कर रही हो, या वहां से जब बार बार आप चबाते हो दांत में लग जाती हो तो आपको पता चले, तो आप फौरन डॉक्टर के पास चले जाइए। अनुवांशिक के लिए आपने कहा तो हाँ, मैं आपसे जरूर कहूंगा कि कैंसर अनुवांशिक भी हो सकता है
जी,
और होता है तो, और नहीं भी होता है ये भी नहीं कह सकते आप। तो ये एक फैक्टर्स है जिनके बारे में अभी कार्य चल रहा है, बहुत सारी रिसर्चें चल रही हैं, पर मैं आपसे कहूंगा कि कोई ऐसी यूजुअल चीजें जो नहीं हो, अनयूजुअल चीज हो रही हो उसके बारे में जरूर, और लॉन्ग टर्म चल रही हो तो जरूर चिकित्सक को दिखाना चाहिए।
यानी शरीर में कोई असामान्य विकृति, असामान्य घाव, अनियंत्रित ग्रोथ, इसके बारे में निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर तपस्विनी प्रधान जी, कार्यक्रम के अंतिम लम्हों में कुछ जी,
क्योंकि अधिकतर हमारे श्रोताओं के मन में ये आ रहा है कि ये जेनेटिक है कि नहीं।
जी हाँ जी,
हेड एंड नेक कैंसर जो है प्राय जेनेटिक नहीं होते हैं, एक थायराइड कैंसर है जो कि कभी कभी परिवार में रन करता हुआ दिखता है, क्योंकि उसका एक जेनेटिक रोल है। जहाँ तक हेड एंड नेक कैंसर में जेनेटिक फैक्टर्स का हम रोल देखते हैं कुछ परसेंटेज में, जैसे अगर उसी परिवार में तंबाकू का सेवन का प्रचलन है तो देखा जाता है अगर एक पहले इंडेक्स केस में है तो उनके जो बाकी जो रिलेटिव, बाकी जो उनके बच्चे हैं करीबन 3.5 फोल्ड बढ़ जाता है। अगर उन्हीं के किसी एक परिवार के सदस्य को मल्टीपल कैंसर्स हो रहा है तो उनके जो सिबलिंग्स हैं, बच्चे हैं, उनके जो चांसेस हैं कैंसर होने के करीबन 7% बढ़ जाता है। यानी कि अगर आपके परिवार में किसी मरीज को कैंसर है, अन्य लोगों को थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, यानी कि बच्चों को थोड़ा और सावधान होना चाहिए, उनमें अवेयरनेस लाना चाहिए और स्क्रीनिंग की ओर ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए।
जी, डॉक्टर तपस्विनी प्रधान जी और डॉक्टर एचसीएल गुप्ता जी, कैंसर के बारे में, हेड एंड नेक कैंसर के बारे में इतनी उपयोगी और लाभकारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के संयोजक थे एसपी सिंह। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार,
शुक्रिया,
धन्यवाद।
अभी आप मुंह और गले का कैंसर, कारण और उपचार विषय पर फोन इन कार्य